क्या ब्राह्मणों के लिए ही संग क्या ब्राह्मणों के लिए संगम युग ही धर्मराजपुरी है? दादी जी का शायद दादी जी का क्लास लगता है 82। कर्म और उसका फल। चलते चलते हम ब्राह्मण बच्चों से यदि कोई भूल हो जाती है तो उसकी परिणाम स्वरूप खुशी गायब होना, पश्चाताप होना, उदासी आना, यह भी सजा है। चलते चलते यदि कोई भूल हो जाती है तो उसका परिणाम खुशी गायब, पश्चाताप और उदासी, स्थिति का गिर जाना ही दंड है। ब्राह्मण जीवन में स्थिति का गिर जाना ही दंड है। स्थिति का गिर जाना ही धर्मराज के दंड है। स्थिति का गिर जाना ही धर्मराज की सजा है। तो अगर चलते चलते यदि कोई भूल हो जाती है तो उसका परिणाम स्वरूप खुशी गायब हो जाना। ब्राह्मण जीवन में खुशी गायब हो जाना, किए हुए कर्मों के ऊपर पश्चाताप होना, उदासी आ जाना, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होना, पुरुषार्थ से दिल हट जाना, ज्ञान सुनना, बुद्धि में रखना, मनन करना, चिंतन करना, ये क्षमता नष्ट हो जाना, तो ये क्या है? सजा ही है। उठने की इच्छा ना होना अमृत के लिए, योग ना लगना, बुद्धि का भटकना, सारी बातें हैं इसमें, पर ये सब अगर हो रहा है तो समझना ये भी जैसे कि सजा मिल रही है। किस जन्म के विकर्मों की? पिछले जन्म की, अभी। ईश्वरीय लॉ उधारी में ज्यादा विश्वास नहीं करता है। अभी का अभी, तुरंत, एक का लाख गुना, पुण्य या पाप, ये ईश्वरीय मशीनरी, ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है। अभी का अभी तुरंत मिलेगा फल। तो चलते चलते ब्राह्मण बच्चों से यदि कोई भूल हो जाती है तो उसका परिणाम खुशी गायब होना, पश्चाताप होना, उदासी आ जाना। जहां उदास वो वहां पर दास बनेंगे। कल वर्णन सुना ना राजा महाराजाओं का, उनके दास नहलाने का काम कराना उनको, वो जो भी उनके सारे दासी के कार्य है वो सब करना पड़ेगा। राइट रॉन्ग की जजमेंट खत्म हो जाना। सत्य क्या है, नित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, श्रीमत क्या है, परमत क्या है, मनमत क्या है, इसकी निर्णय शक्ति समाप्त हो जाना, यह भी सजा है। यह भी जैसे सजा है, कंफ्यूजन में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ज्ञान में चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, संसार में रहने वाली आत्माओं को, इस तरह के जो संकल्प आते हैं ना, नई आत्माओं को, इस मार्ग पे चलना है या पीछे हट जाना है। बाबा को पत्र लिखते हैं, कल परसों की मुरली में था ना, कि बाबा हम पवित्र नहीं रह सकते, मुश्किल है। आज की तो सारी मुरली ही पवित्रता के ऊपर है। आधी मुरली पवित्रता के ऊपर, आधी मुरली अदृश्य, आत्मा भी अदृश्य और परमात्मा भी अदृश्य, अदृश्य का खेल। तो आंखें ही सबसे ज्यादा धोखा देती, बहुत अच्छा है अगर आंखें ना हो तो। वो सूरदास की बाबा ने थोड़ी महिमा कर दी है आज, अच्छा है, स्त्री को देखेंगे ही नहीं, बुद्धि जाएगी ही नहीं, ज्ञान अच्छा लेंगे वो लोग, बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में संत एक तुकाराम वो लिखते हैं, पापाची वासना नको दाऊ दौड़ा त्या आंधड़ा बरामी, पाप की वासना आंखों से ना दिखे इसके लिए तो अंधा ही अच्छा हूं मैं, अपवित्र शब्द नको माजा मुखे त्याउन मुखात बरामी, अपवित्र शब्द मेरे मुख से निकलने से अच्छा है मुका रहना हो गया, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। यह आंखें भी धोखा देती है, अच्छी चीज देखी तो म्याऊ म्याऊ करते हैं। बाबा ने कहा आज ये खाऊं वो खाऊं, कर्मेंद्रियों को वश में करना है। योगी अर्थात कर्मेंद्रिया वश, कर्मेंद्रिया ही धोखा देती है, और सबसे ज्यादा धोखा देती है आंखें। इन आंखों को वश में करना है। नासिकाग्र दृष्टि रखते हैं कुछ कुछ योगी भक्ति में, यहां वहां देखना ही नहीं, यहां ही देख के चलते, नासिकाग्र दृष्टि। देखेंगे ही नहीं तो विकर्म नहीं होगा। पर कल परसों की मुरली में था, इसका मतलब ये नहीं कि आंखें ही निकाल लो, है ना, लास्ट लाइन मुरली की दो तीन दिन पहले। तो रॉन्ग राइट की जजमेंट ही खत्म हो जाना, निर्णय शक्ति खत्म हो जाना, यह भी सजा है। ब्राह्मण जीवन में सजा है क्या क्या है वो सुनो, कहां भोगनी है, यहां। क्यों भोगनी है? स्वयं के ही विकर्मों से के कारण। कई बार हम समझते भी हैं कि हमारे पुराने कड़े संस्कार हैं, यह नहीं होने चाहिए, फिर भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यह भी सजा है। पता है ये संस्कार है जिसके वजह से दुख की प्राप्ति हो रही है, परंतु साथ साथ ये भी पता है कड़ा संस्कार है, साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि बहुत प्रयत्न किया उसके बाद में भी असफल, हाथ में विफलता ही आ रही है बार बार, तो फिर व्यक्ति आत्मा दिल शिकस्त होती है और फिर प्रयत्न करना बंद कर देती है। वो कहां था ना, एडिसन को किसी ने पूछा जब वो बल्ब की खोज कर रहा था, 700 बार हो गया था, किसी ने कहा अब तक और भी ट्राई करना है क्या, अभी छोड़ो ना, ऐसी कोई इलेक्ट्रिसिटी तो बनने वाली है नहीं, बिजली। उसने कहा क्यों नहीं बनेगी, अभी तो मेरे पास और 700 प्रकार मुझे पता है जो कि जिससे बल्ब इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई जा सकती है। मुझे अभी 700 मार्ग ऐसे पता है कि जिससे ये नहीं बनाई जा सकती, और कुछ अभी मार्ग है वो और ट्राई करूंगा। तो पुरुषार्थ में यदि कड़ा संस्कार है, उसको बहुत प्रयत्न किया, भरकस प्रयत्न, उसके बाद में भी वो नहीं निकला, नहीं छूटा, छोड़ना नहीं है पुरुषार्थ, क्योंकि वो छोड़ देना ही फिर एक सजा है। लाइन क्लियर नहीं, क्लास में मन नहीं लगता, योग में बैठते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यह भी ब्राह्मणों के लिए सजा है। क्लास में बैठे तो बुद्धि भटकना, क्लास में मन नहीं लगना, नियम प्रमाण केवल जाना जबरदस्ती, बैठना और सुनना कुछ तो दिन जुट का वो तो लाइन क्लियर नहीं, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर का प्ले है हेमलेट, उसमें वो लिखता है, उसका मराठी ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है, जगाव की मराव हाथ प्रश्न है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ब्राह्मण तो बन गए, अभी आगे क्या, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या करूं समझ में नहीं आता है। शेक्सपियर के प्ले में हेमलेट जो है कंफ्यूज हो जाता है, क्या करना है मुझे अब। देर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। अपना जो सिपाही है उसका, उसको वो कहता है हेमलेट होरेशियो को कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आई है। There are many things in heaven and hell, स्वर्ग और नरक में जो इतनी सारी अथाह बातें हैं, वो अभी तक ना तो मुझे समझ में आई है, ना तो तुम्हारी जो फिलोसॉफी, वो बड़ा बुद्धिमान होता है होरेशियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी, जो तुमने सोचा भी नहीं होती ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। इसके लिए हैमलेट रोता है अकेले में, एकांत में दिखाया है, रो रहा है, भगवान से बातें कर रहा है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या करूं मैं अब, ऐसी स्थिति आ जाना भी सजा है। जबकि इसका मतलब कि श्रीमद बुद्धि में नहीं है, इसका मतलब ज्ञान बुद्धि में नहीं है, इसका मतलब मनन चिंतन नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो जो ज्ञान बाबा सुना रहे वो बुद्धि में बैठा नहीं है। अभी तक पुराने संस्कारों का पलड़ा भारी है, यह भी सजा है। मन में संकल्प विकल्पों की पीड़ा है, संकल्प और विकल्पों की पीड़ा है, तो दुआओं के बदले सर्व की बद्दुआएं मिलती है। ब्राह्मण परिवार से स्नेह नहीं मिलता, प्यार नहीं करता कोई, कोई कहते हैं ना ऐसे, कोई ध्यान नहीं देता, कोई प्यार नहीं करता, हमको तो एकदम अकेले दूर सेंटर पे रख दिया है कहीं, वहां पे कोई पूछता भी नहीं, ऐसी अवस्था। किसी का फेथ नहीं रहता है, शक की नजर से देखते हैं सब, बड़े शक से देखते हैं, किसी का फेथ नहीं है हम पर, किसी का विश्वास नहीं है हम पर, क्योंकि मन में संकल्प विकल्पों की पीड़ा है, तो दुआ नहीं मिलती, बद्दुआ मिलती है। एक बहन आई थी, उसे बहुत सारी तकलीफ थी, पर वो कहती थी कि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे सेंटर पर जो भी आता है वो मेरे विरोध में हो जाता है, कुछ समय के बाद एंटी हो जाता है, ऐसे शब्द उसने कहा, कोई भी आता है तो, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है, आता है कुछ समय रहता है और तुरंत बाकी किसी का विरोध नहीं करता है, मेरे विरोध में हो जाता है बस। मुझे कह रही थी आप तो ब्राह्मण है क्या, आपको तो पता है ना ब्राह्मण कल्चर, ने कहा पता है। ब्राह्मण कल्चर तो ज्ञान में रहना पर्याप्त है केवल जादू टोना से अछूता रहने के लिए, स्थिति चाहिए ना। ज्ञान में रहने की परिभाषा क्या है सबसे पहले, ज्ञान में आने की परिभाषा क्या है, कोर्स करना ये परिभाषा है, क्लास में जाना ये परिभाषा है, अमृत वेला उठना ये परिभाषा है, सेवा करना ये परिभाषा है, परिभाषा क्या है ज्ञान में चलने की, ज्ञान में चल रहे, ज्ञान अंदर कितना चल रहा है, ज्ञान में चलना केवल नियमों का नेमिनाथ होकर पालन करना, ये ज्ञान में चलना नहीं, नियमों को अपने ऊपर थोपना ये ज्ञान में चलना है, ज्ञान में चलने की परिभाषा बड़ी हुई है, वो अतीन्द्रिय सुख, तुम्हें सदैव अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कल परसों की मुरली थी, तुम्हें सदैव अतीन्द्रिय सुख में रहना है। अगर ज्ञान में तो चल रहे परंतु अतीन्द्रिय सुख का यदि अनुभव नहीं है तो क्या उसे ज्ञान में चलना कहेंगे, मन में संकल्पों की पीड़ा होना, तो दुआ के बदले सर्व की बद्दुआएं मिलेगी। ब्राह्मण परिवार से स्नेह नहीं मिलता, किसी का फेत नहीं रहता, यह भी किसी कर्म के फल की सजा है। पांचवा, संगम युग जितना ही कमाई का युग है उतना ही भोगना का भी युग है, सारी भोगना है यहीं भोगनी है, ये भोगना का भी भोगना का युग है, ये दादी जी का, शायद दादी जी का क्लास है। क्या ब्राह्मणों के लिए संगम युग ही धर्मराजपुरी है, 82 15 अगस्त। तो पांचवा पॉइंट क्या था, संगम युग कमाई का भी युग है तो भोगना का भी युग है, कुछ इस जन्म के ज्यादा से ज्यादा, कुछ पूर्व जन्म के भी है, ऐसे ऐसे हिसाब सामने आ जाएगा। ऐसी आत्माएं जो हमेशा जिन्होंने सबको सुख दिया उन्हें भी ऐसी ऐसी बीमारी आ जाएगी कि सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी बीमारियां, वो भी भोगना ही है ना। हम ब्राह्मण बच्चे बाप को पाकर कमाई करते हैं और हम ब्राह्मण ही यदि श्रीमद की अवज्ञा करते हैं तो कमाई के बदले सब कुछ गवाते हैं, अगर अवज्ञा है तो शापित है। वरदाता से वरदान लेने के बजाय शापित होना, यह भी सजा है। सजाओं की लिस्ट संगम युग की, यह भी एक लिस्ट है। प्राप्तियों की लिस्ट, अधिकार की लिस्ट, वरदानों की लिस्ट, सम्मान की लिस्ट, भाग्य की लिस्ट, तुलना की लिस्ट, क्या थे क्या बन गए इसकी लिस्ट, खजानों की लिस्ट, सजाओं की लिस्ट। क्या क्या किए तो क्या क्या मिलेगा। अतिंद्रिय सुख नहीं, ब्राह्मण तो बन गए पर अतिंद्रिय सुख का अनुभव तो हाईएस्ट स्टेज है। एक तीनों में मिल सकता है, ज्ञान में, योग में और सेवा में। ज्ञान की पराकाष्ठा अतिंद्रिय सुख है, वही अतिंद्रिय सुख योग की पराकाष्ठा, उसमें भी वही। और सेवाएं भी अगर उस भाव से करे जिस भाव से बाबा कह रहे हैं तो अतिंद्रिय सुख मिलेगा, नहीं तो सेवाओं में टकराव, बोझ, भारीपन, सेवा करते ही टक्कर होगी, वाइब्रेशंस की टक्कर, वृत्तियों की टक्कर, संस्कारों की टक्कर, वैमनस्य, बेबनाव, बेबनाव अर्थात कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरों के साथ। तो अतिंद्रिय सुख नहीं होना, खुशी का अनुभव नहीं, उदासी है तो भी सजा है। खुशी गायब, उदासी गायब, उदासी आ जाना और अतिंद्रिय सुख ना होना, ये सब सजा है। कई बच्चे बाबा के साथ अपने सर्व संबंधों का अनुभव कर खुशी में नाचते हैं। कईयों का किसी देहधारी से प्यार हो जाता है, कईयों का देहधारी से प्यार हो जाता है। किसी में बुद्धि अटकती है तो उनके आंसू बहते हैं, पश्चाताप करते, यह भी सजा है। टीचर्स बहनों से मुलाकात करते हुए बाबा ने कभी कहा है, अगर सेवा प्यार से नहीं करते या किसी के प्यार में फंस के सेवा करते तो सफलता नहीं मिलेगी। सेवा यदि प्यार से नहीं करते या प्यार में फंस के सेवा करते, किसी के भी नहीं कहा था उसमें, केवल इतना था कि प्यार में फंस के सेवा करते तो सफलता नहीं मिलेगी। तो कई बच्चे बाबा के, कई ऐसे भी हैं कि जो बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते और खुशी में नाचते हैं। कल की मुरली में था ना पार्टियों से मुलाकात, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व रस, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति सब कुछ, एक की श्रीमत पर चलना, एक की याद, एक रस स्थिति, एक को ही देखेंगे। और कुछ है दुनिया में देखने जैसा? बहुत देख लिया और बहुत सुन लिया। तो यह भी पश्चात, अगर बुद्धि भटकती है, बुद्धि अटकती है किसी में तो खून के आंसू बहाते हैं। दुनिया में खून की नदियां बहेगी और ब्राह्मण संसार में खून के आंसुओं की नदियां बहेगी। कौन सी खतरनाक है? वो यही है। दोनों। छठवां पॉइंट, यह ब्राह्मण जीवन है ही हम बच्चों के लिए मर्यादाओं पर चलने का जीवन। बाबा ने हमें श्रीमद की अनेक अनेक मर्यादाएं सुनाई है। पहली पहली मर्यादा सुनाई, बच्चे सर्व संबंध एक बाप से रखो। अगर हम यह मर्यादा सूक्ष्म वृत्तियों में भी उल्लंघन करते हैं तो उससे वायुमंडल खराब होता है और इसकी फिर सजा भी मिलती है। लेकिन अगर किसी में थोड़ी बहुत कमजोरी है या फिर भी वो बाबा को सच्चा है, अपनी दिल की बातें सफाई सच्चाई से बाबा को सुनाता है तो कहा जाता है सच्ची दिल पर साहेब राजी। उससे बाबा की दुआएं मिल जाती है और वह अपनी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर सच नहीं सुनाता, छिपाता है तो एक भूल की पिछाड़ी अनेक भूल करता रहता है तो उसकी भी बहुत कड़ी सजा मिलती है। बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको जीवन में पालन करना, यह भी वरदान पाना है। श्रीमत की अवज्ञा करना अर्थात शापित होना। शास्त्रों में तो कोई दूसरे को शाप देता है, यहां तो स्वयं ब्राह्मण आत्मा ही स्वयं को शापित करती है। पत्थर बुद्धि भाव स्वयं को ही वरदान देती है। व्यर्थ संकल्प से परिपूर्ण भाव। स्क्लेरोडर्मा कहते हैं उसका, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। यहाँ पर भी एक बहन है हमारे पास जो टेलरिंग में सेवा करने आती है, उसका भी पूरा बॉडी जो है पत्थर के जैसा है, वो इतना सा खुलता है, वो तो बीमारी है। तो वो तो बीमारी है एक रीति से, स्क्लेरोडर्मा कहते हैं उसे, जिसमें पूरा के पूरा शरीर पत्थर का हो जाता है। हाथ ऐसे कैसे रहता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। यहां थी एक, तो पर वो तो शरीर, यहां बुद्धि मन संकल्प की बात चल रही है। शरीर हो गया तो चलेगा, कुछ नहीं उससे वो भोगना है, वो शरीर की भोगना है, चलो वो तो चल जाएगा, फिर भी शरीर पत्थर हो जाए तो चलेगा। यहां बातें चल रही है मन की, बुद्धि की। तो श्रीमत की अवज्ञा करना अर्थात शापित होना, स्वयं को ही शापित कर देते। सातवां, अगर उल्टा कर्म करके छिपाता है तो, एक तो उल्टा कर्म किया और बता दिया, वो फिर भी ठीक, फिर भी माफी तो इस ड्रामा में हो नहीं सकती। वो बता भी दिया तो हल्के खुद होंगे, पर माफी शब्द इस ड्रामा में है ही नहीं, बाबा ने सीधा बोल दिया है। अब जो समझना है समझो, ये महावाक्य है बाबा के कि माफी यहां हो नहीं सकती। जो भी पाप विकर्म कुकर्म, वो आगे की स्टेज है, वो तो विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ तो श्रेष्ठ आत्माओं का है। बाकी जो आत्मा है वो तो विकर्म किए ही जा रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। सदगति तब हो जब पता चले हम दुर्गति में हैं। ज्ञान में आने के बाद की बातें चल रही है, ज्ञान में आने के पहले की नहीं, आने के बाद, आने के बाद की दुर्गति। ये दादी का ही है शायद सारा। योग से उसको मिटाया जा सकता है, शक्तिशाली योग से और स्थिति से, जो विकर्म है चाहे इस जन्म के या किसी और जन्म के, पर लंबे समय की धारणाएं, लंबे समय का पुरुषार्थ, तो तब वो सारे विकर्म नष्ट हो सकते हैं सारे ही। नहीं देखते हैं, परंतु दृढ़ संकल्प से फिर भी किया जा सकता है, क्योंकि एक विकर्म दूसरे विकर्म को जन्म देता है, एक व्यर्थ दूसरे व्यर्थ को जन्म देता है। अगर उल्टा कर्म करके छिपाते हैं तो, उल्टा कर्म तो किया उसमें छिपा रहे, अभी क्या होगा, तो उसकी दिनचर्या में और उसके और भी अनेक विकर्म होते रहेंगे। झूठ बोलेंगे, झूठ बोलना, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या करेगा, किसी से भी नाराज हो जाएगा, बार बार नाराज होना, छोटी छोटी बातों में नाराज होना, अति सेंसिटिव नेचर, कभी स्थिति को एकरस नहीं होने देगा। हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमारी जेब में चाहिए, किसी और के जेब में नहीं। इधर से दबाया तो खुश, दबाया तो दुखी, ऐसा ना हो। एक विकर्म से और भी अनेक विकर्म होते जाते हैं, और फिर उसका ही संस्कार उसको खाता है, कॉन्शियस अंदर से बाइट करता है जिसको कहते हैं। पता है नहीं करना चाहिए, परंतु रोक नहीं पाते, पता है ये नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था हो जाती जैसे व्यसनाधीन व्यक्ति है जिसे कोई लत लग गई है, क्या उसे पता नहीं बीड़ी सिगरेट दारू ये सब नहीं पीना चाहिए, उसको पता है। ये शराब वाले माउंट में सबसे ज्यादा है, और सारे यंग, एक तो ग्रुप ही है 12 लोगों का, उसमें से 3 शरीर छोड़ दिया हॉस्पिटल में, अभी और है बाकी बच्चे, सब दोस्ती है, बचपन से पी रहे हैं, आते रहते हैं बार बार, क्या उनको पता नहीं ये गलत है? पता है सबको, छोड़ना भी चाहते हैं, प्रूफ इतना आसान नहीं है भाग्य भी चाहिए फिर वहां पर कोई कोई है जो छोड़ सकता है दृढ़ संकल्प से, परंतु बहुत मुश्किल है उनके लिए, बहुत मुश्किल है। उनकी तकदीर में 3 महीने में एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होना, दृढ़ संकल्प करना, जाना और फिर आ जाना वापस।
भाई के एक फ्रेंड आए थे हिमाचल से,
वो क्योंकि वो पीते ही क्या होता है, शरीर से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसमें कुछ नहीं है परंतु कुछ डोपामिन सेरोटोनिन, और वो जो केमिकल्स ब्रेन से रिलीज होते पूरे शरीर में तन बदन में एक सुखद अनुभव करता है, जो अनुभव संसार में और किसी से प्राप्त नहीं होता है। इतना तनाव भरा जीवन, तो वो केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे, तो वो सुख का अनुभव के लिए व्यक्ति वो करता है। वही केमिकल्स योग से भी रिलीज होते हैं, परंतु योग करना और वो व्यसन कौन सा आसान है, वो ज्यादा आसान है, तुरंत मिलता है। योग में भी वो अनुभव होते हैं, योग में भी वही सब कुछ होता है, एक्सरसाइज से भी वो सब कुछ होता है, वही केमिकल्स रिलीज होते हैं, उससे भी ज्यादा मात्रा में रिलीज होते, परंतु ये योग लगना मतलब सारी धारणाएं, सारी श्रीमद, सारी मर्यादा, ये सब आ गया उसमें। मेहनत है, वो तो आसान है। थक गए बराबर, सारे दिन भर उसका विरोध करेंगे मन में, नहीं पीना है, ये तो शराब बहुत खराब चीज है, खराब बहुत। पर जैसे ही शाम का समय आता है, कदम अपने आप मधुशाला की ओर चलते हैं, अपने आप फिर पीते हैं, फिर रात को सोते, फिर सुबह सुबह उठ के अच्छे संकल्प आते हैं, सुबह सुबह श्रेष्ठ संकल्प आते हैं कि कितना मेरा जीवन खराब हो गया, पत्नी का कितना ये हो रहा है, बच्चों का कितना, कितने पैसे उसमें जा रहे हैं, बिल्कुल आज से तो पूरा बंद, प्रतिज्ञा करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके विरोध में भी दोस्तों को भी बताएंगे, सब कुछ करेंगे, अपनी दिनचर्या जो कार्य है वो भी करेंगे, पर जैसे ही शाम का समय आता है वो यादें आने लगती है और आप ही कदम चल पड़ते हैं उधर। ये तो है मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन की कविता है इसके ऊपर, मधुशाला, अपने आप कदम चलते हैं उसकी तरफ। तो ये भी जैसे वो आदतें हैं, ये भी ऐसी कुछ कुछ आदतें इधर है, जो ज्ञान योग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करो 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 करो, दूसरों को सुनाओ, और वो एक संस्कार ऐसा है जो आता है और सब गिरा देता है। तो एक विकर्म से और भी अनेक विकर्म होते जाते, फिर उसका भी संस्कार उसको खाता है, भले वो नथिंग न्यू ड्रामा भी कहे, परंतु सच ना बतलाने से वह संस्कार कड़ा हो जाता है। उसकी रिजल्ट यह होती है कि बाबा के प्यार से, ब्राह्मण परिवार के प्यार से वंचित होता है, पढ़ाई से भी दिल टूट जाती है, पढ़ाई से दूर हो जाना, बस यहां पर माया व्यवहार करती है। जब व्यक्ति थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है ना, सबसे पहला काम वो करता है ज्ञान से दूर हो जाना, उसको लगता है क्या सुने वही वही, वही सबसे बड़ी गलती। जब स्थिति नीचे जाती है तब तो और ज्यादा ज्ञान का चर्चा चिंतन मनन करना चाहिए, वहां पर ही क्या करता है, छोड़ो अभी क्या करना है, ज्ञान योग करते बस, योग तो लगता नहीं पर करते रहते हैं। वहां सबसे श्रेष्ठ बात है कि ज्ञान लाओ, क्योंकि अंधकार आ गया है तो प्रकाश को ही लाना पड़ेगा, तब तक वो अंधकार विसर्जित नहीं होगा। दिल ही टूट जाती है पढ़ाई से, अपने संस्कारों में मजबूत होता जाता है, जिससे की कमाई चट हो जाती है। आठवां, बाबा भी कभी कभी बच्चों के लिए कह देते हैं, यह तो जैसे यज्ञ में विघ्न रूप है। बच्चा, बाबा व दैवी परिवार के यह बोल निकलना भी उसके लिए सजा है। हम बाबा के पास आए हैं सर्व की दुआएं लेने, हमारी पालना ही दुआएं से है, लेकिन अगर कोई ऐसी भूल होती है, विकर्म करते अनेकों के मुख से दुआ के बदले बद्दुआएं निकलती है, यह भी सजा है। हमें देखकर गई आत्माएं ज्ञान छोड़कर चली गई तो उसको क्या कहे, देखा कि ये लोग भी ऐसा ऐसा करते हैं, या फिर हमें देखकर किसी की धारणाएं कम हो गई। सेंटरों पर बहुत धारणाएं करते, एक भाई ने अनुभव सुनाया था ना, सेंटर पर जब तक था 6 मास से, पता चला ज्ञान और ये इतनी खुशी, तो मौन में भोजन करता था, 1 साल तक मौन में भोजन किया। पहली बार बाबा से मिलने आए, मधुबन में आया, देखा यहां तो बातें कर रहे, भोजन करते करते उसने भी भोजन करते करते बातें करना, टेबल टॉक जिसको कहते हैं, दादी जानकी की क्लास में टेबल टॉक। तो वो अपनी धारणा छोड़ दी और इधर सबको देख के वो चालू कर दिया, यहां देखा योग का समय है और कुछ और कर रहे हैं यहां, तो कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई किस में लगा हुआ है, उनको लगा हमने भी किया तो क्या है। धारणाएं थी, आत्माओं को देखकर धारणाएं कम हो गई, तो क्या पाया हमने, दुआ है या बद्दुआ है? परमात्मा की दुआ है या बद्दुआ है? उस आत्मा की तो छोड़ो, परमात्मा की दुआ है और बद्दुआ है की बात। तो बद्दुआ तो कभी देता नहीं हो, परंतु विकर्म करते अनेकों के मुख से दुआ के बदले बद्दुआ निकलती है, यह भी सदा है। वह निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, अगर सर्व का प्यार मुझे नहीं मिलता, मैं बाबा के दिल पर नहीं, ब्राह्मण परिवार के दिल पर नहीं, तो यह भी विकर्मों की सजा है। उसमें भी सबसे बड़ी एक और एक चीज है, लंबा समय तक ज्ञान में चलने के बाद गृहस्थी बनने का संकल्प आना, गंधर्व विवाह जिसको कहते हैं, एक मुरली इसके ऊपर भी है, साकार मुरली। भले गंधर्व विवाह क्या, भले पवित्र रहे, बाबा ने कहा है उसमें, बहुत ही कड़े शब्द है, फिर भी कहने में तो ये आता है ना, ये मेरा युगल है, तो गिर गए ना नीचे। सबसे पहला है कुमार कुमार कुमारी जीवन, उसके सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज तो वो कहा जा सकता है, तो घर गृहस्थी में रहते और पवित्र रहते, क्योंकि वो तो पहले ही गृहस्थी बन गए थे, बाद में उनको पता ही नहीं था तब। और थर्ड नंबर पे वो है फिर, जो पता था, सब कुछ पता था, क्योंकि उन्होंने ग्लानी की है। किसकी? सबसे पहले तो श्रीमत का उल्लंघन किया, वो अलग, अभी नहीं कराता है ऐसे किसी का बाबा। चिंता हो गई घर गृहस्थी की, अभी इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, यहां क्या होगा, वहां क्या होगा। अरे तुमको क्या करना है, जीवन किसको दिया है वो देखेगा, जिसको क्या, उनका क्या करना है, पीछे नहीं हटना है। ऐसा रमन महर्षि के जीवन में दिखाते कि उसको इतना वैराग आ गया, इतना वैराग, पर रमन नहीं या अरविंद, जैसे कोई दोनों में से कोई तो एक है शायद, इतना वैराग आ गया, पर उसकी पत्नी थी, अभी उसका डिलीवरी हो रही थी, बच्चा हो गया, पत्नी मर गई, अभी वो बच्चे का क्या करे, और वो वैराग अभी संन्यास लेने के लिए तैयार है, अभी इस बच्चे का क्या करूं, बीच में बाधा आ गई है, तो संन्यास मार्ग में इतना तीव्र वैराग अंदर, तो उसने देखा कोई एक चिपकली या कुछ ऐसे दीवार पर चल रही थी, वो नीचे गिरी, दो टुकड़े हुए उसके अंडे, और वो अंडे से फिर नया जीव निकला, तो उसने देखा वो मर गए, उसके बाद भी जीव निकला, तो जिसने इसको जन्म दिया वो देखेगा इसको, और वो छोड़ के चला गया, रुका नहीं वो बच्चे के लिए। तीव्र वैराग ऐसी चीजें भागवत में लिखा है, जो संपूर्ण परमात्मा के प्रति समर्पित है वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है, मात पिता का ऋण, समाज का ऋण, देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, उसे इन सब की किसी की चिंता नहीं करनी है। फिर जो मेरे पास आएगा मैं उसकी जिम्मेवारी लूंगा, योगक्षेमम वाहम्यहम, उसके परिवार को भी मैं देखूंगा, पर उसकी दृढ़ता पर है, इतना वो दृढ़ है। अगर वो चिंता करते रहे इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता इस मार्ग। नौवा पॉइंट, पत्थर ही बनना पड़ता है, इमोशंस
है ना, अरविंद ऋषि वो पढ़ने गया था
विदेश में,
वहां से जब लौट के आना था तो उस टाइम शिप में शिप छोड़ दिया, दूसरा शिप पकड़ गया, जो पहला छोड़ दिया वो डूब गया। ये खबर जब उसको पिताजी को मिल गया,
वो पहुंचने से पहले ही पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, पिताजी भी उसके डॉक्टर थे।
घर में जब पहुंचा देखा माँ विधवा, उसका जुगल वो भी विधवा, वैराग आ गया,
तुरंत वैराग आ गया। फिर भी वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कुछ पार्ट किया, पर जैसे उसको सजा मिली एक साल के लिए, उस जेल में ही उसका संपूर्ण परिवर्तन हो गया। वहां पर उसने किताबें पढ़ी, भगवद गीता पढ़ी, वो सब पढ़ा, और जब बाहर निकला तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उसे कोई रस नहीं रहा फिर, नहीं तो उसका बहुत नाम था उधर। वो तो ऐसे भाषण देता था कि सबको जैसे आग उत्पन्न हो जाती थी सबके हृदय में, अंग्रेजों के विरोध में आतंक, मतलब इस तरह से वो था सुभाष चंद्र बोस और इसके साथ में तो। पर बाद में जैसे जेल से निकला वो सन्यासी बन गया पूरा। फिर इसने सब छोड़ दिया, पांडिचेरी उधर चला गया। तो वो भी जीवन की परिवर्तन की कहानी है वो एक। नौवां पॉइंट, बुद्धि में निर्णय शक्ति होनी चाहिए, वह खत्म हो जाती है, निर्णय नहीं कर पाते क्या करना है, काला ग्रहण बैठ जाता है, इक्लिप्स, बुद्धि का ताला लग जाता है। फिर एक अवज्ञा के पीछे अनेक अवज्ञाएं होती है और वो जानता नहीं है, उसे समझ में नहीं आता ये अवज्ञा भी है, क्योंकि श्रीमत बुद्धि में नहीं है तो वो उसे श्रीमत ही मानता है, ठीक ही समझता है सब कुछ। एक अवज्ञा के पीछे दूसरी अवज्ञा, अवज्ञा अवज्ञा इकट्ठी होती जाती है और अचानक एक दिन धड़ाम से गिरता है, ना फरमानदार बनता है, वह पाप का भागी बन जाता है, ऐसे पाप की सजा जो वह खून के आंसू बहाता है। दसवां लास्ट, पूरे 16 पॉइंट है। आज कोई भी पतित बनता है तो उसकी आत्मा अंदर ही अंदर क्या करती है, शब्द पावरफुल है इधर भक्ति के, क्या करती है आत्मा, अगर कोई पतित बनता है तो उसकी आत्मा अंदर ही अंदर घुटती रहती है और जलती रहती है, नोचती है, अच्छा मरती रहती है, टुकड़े टुकड़े मौत, एक होती है एकदम मौत, एक होती है टुकड़ा टुकड़ा मौत, ये बड़ा खतरनाक चीज है, टुकड़ा टुकड़ा थोड़ी थोड़ी मौत हर दिन। बाबा कहते हैं अगर कोई भी पतित बनता है तो उसकी आत्मा अंदर ही अंदर त्राह त्राह करती है, त्राही त्राही होगा, त्राही त्राही करती है, रोती है, पर किसको दिखा नहीं सकता आंसू, मीरा रोए चुपके चुपके, मेरा दर्द ना जाने कोई, वो तो प्रभु प्रेम की थी, ये दूसरा है चुपके चुपके रोता है, पर किसको दिखाए आंसू और किसको बताए। श्रीमत की अवज्ञा माना, याद कर लो इसको, श्रीमत की अवज्ञा माना खुद ही खुद को धर्मराज के दंड के भागी बनाना, श्रीमत की अवज्ञा माना खुद ही खुद को धर्मराज के दंड के भागी बनाना। इसका पुरुषार्थ खत्म, पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म, गिरती कला हो जाती है, यह भी उसके लिए सजा है। और भी बहुत सजाएं हैं, कल देखेंगे 11 से लेकर 16 तक। ओम शांति।